Hare Krishna, thank you so much. Thank you for coming. And although it's a short visit today and tomorrow, but we will try to take advantage of our stay here to the best of our ability. When we get together, when devotees get together, what happens? Satam prashangam mamavita samhita. Achha. So Radha Chakra Prabhu mein pooch rahe hain ki aise kon kon bhakt jinko angrezi mein asubhidha hota hai samajhne mein to hindi mein अनुवाद का जरूरत हो कौन अच्छा काम किया ओके तो हम क्या करेंगे दैट कॉर्नर हु कैन कम टू यू ओके वंडरफुल थैंक यू सो मच और इस टाइम में कौन हिंदी का जरूरत है ओके तो जो हिंदी में सुनना चाहते हैं आप उस कोने में चले जाइए राधा चरण प्रभु में Chavarga, cha, 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 cha. Chavardha. And so Pavarga has how many letters? What are those five letters? So Pavarga. These five letters stands for five things. Pavar Parishram. In the materialistic way of life, you have to work so hard. Only intelligent people run away from their work and come to Bharatpur for retreat. Otherwise, it's all parishram. And as a parishram, as a result of parishram, what happens? Tenam. They start to tenam is form. They start to form in the mouth. Then bomb, bathtub is uselessly wasted. So bomb, bathtub, whatever they do ultimately is useless. Failure. All the endeavors in the material nature becomes failure. Then bhav, fear. They become afraid, so afraid. Bhav. They are afraid of losing their money. They are afraid of disease. And then finally, mrityu, mort, death. So these are the materialistic way of life. Parishram, Tena, Vyatha, Bhaya, but when we hear about Krishna, when we hear Krishna Katha, then what happens? Power. This power, this high aspect of materialistic life is finished, destroyed, as I was saying. You read Prabhupada's book and what happened? Your material life is finished. Did it happen? Huh? Are you happy about that? Huh? Very good. So apavarga about money. They become set on the path of this apavarga. Then there is no more parishram. Devotee life means no more parishram. Instead of parishram, you have fun. Right? Devotional service is full of fun. No hard labor. When you enjoy doing something, then you find it to be difficult. Like children play. Is it very strenuous, or people say, so strenuous, but do they think the strength? Why not? Because they are enjoying doing that. Then there is no hard labor, there is no unnecessary strain, and in the material platform everything is bad for us. But in the spiritual platform, everything is successful. In spiritual platform, whatever you do becomes successful. And then there is no bhaktaka, there is no bhai. Spiritual life is abhai, no bhai. We become free from all bhais. Abhavacharya, Srila Prabhupada's devotee, sweet, is the shelter of all removal from Abhavacharya. And then, mrityu. in spiritual life, no breakthrough. And that's why we have come here to discuss. The art of dying. And what is the result of that art of dying? The result of art of dying is, no, I'm sorry, art of dying I'm giving some other reason. This one is Vaishnava Sangha. Anyway, you can do it with this sort of this too, that in Krishna consciousness, so often the style of Bhagavati. One who takes to Krishna consciousness, he gets Amrit nectar. So Amrit of style. He becomes Amrit, Mrityu, Amrit. Like this, or the word or indicates no. Like apavarga means no power. Amrita means no mrityu. Abhaya means no fear. Abhyatha means no battle. So Krishna consciousness is nullifying all the bad things of materialistic way of life. So the purpose is satam prashangam mamadhi jasampita. When you come to Krishna conscious gathering, when you associate with the, when the sadhus get together, here we are the sadhus. You are the sadhu and I am trying to become a sadhu. So it's a sadhu sadhu. So we are trying to take advantage of each other's association. So what is the objective of this association of Krishna consciousness? The objective of this retreat, what should be the objective? The first thing is, you are away from home. Are you missing home? How many of you are missing home? No one. I think now I'll be in trouble. I'm in more trouble. No, it's all right. I'm very happy. So this is the home of a devotee, as you so aptly pointed out. The home of a devotee is where Krishna seva is, where the opportunities are certain. So that is our home. And so we are here, as Janavi Mataji pointed out, that we are here to be in our real home or real homely atmosphere. Then what will happen a few days here when we go back? We'll miss these days even more when we go home. You can notice that. Whether you go home or whether you go home to go to your hostel, the real purpose and real benefit of being in such atmosphere will become really felt when you go back to your original situation. So sadhu sangha, sadhu sangha, sarva shastra gaya, labha matra sadhu sangha, sarva. Labha matra, what is the labha? Chapala sukha labha lahi. Labha, labha is a measurement of time. In the Western concept, in modern concept, what is the smallest time? What is smallest time? Smallest time is second, right? But you know what is a labha? Labha is 1/11 of a second. And it doesn't stop in labha. It starts with much, much smaller concept. So, like one concept is truly very, very small concept. But it is saying that the Lokamatya Sadhushanga, association of a devotee for 1/11 of a second, Sarva Shiddhi Maharaja achieves spiritual perfection. Like for example, how it can happen? You come across a devotee distributing books. And you get the book. Or maybe you didn't even take the book. You thought, no, I'm so busy, I don't have the time. So you just left. For how long did you make the devotee? For a fraction of a second. But then you start to think, oh, he looks so nice. Maybe I should have taken the book. So the next day you come to that place and start looking for the devotee. Then you meet the devotee. And then you don't know whether it should be how it should be addressed. You say, you tell him, I want a book for you. So you take the book. Then you start reading the book. And when you start reading the book, then what happens? When you start reading the book, then you begin to realize. Prabhupada is speaking about so many wonderful things. Like one of the things that Prabhupada spoke in his books, in unmistakably and repeatedly, what did Prabhupada say? We are not this body. We never thought of it before, but by reading Prabhupada's books, it became so meaningful. Yes, that's true. And Prabhupada gives an example from quoting Bhagavad Gita. Vehi nashmi yathārmani bhūmārati. Does it make sense? How many of you know that verse? Please raise your hand. Now, how many of you know the meaning of this verse? So, what is the meaning? The body is changing, but you are not changing. Right? Like, for example, how big was your body when you were 5 years old? How many of you who are 5 years old at one time? And what kind of body did you have at that time? Yeah. 2 years smaller. So, where is that body? Is that body there anymore? Now, practically all of you have a different body. So where is the 5-year-old body? Gone. But are you the same person? Huh? You are the same person. So then who are you? Are you your body or you are somebody else? Are you your body or you are somebody else? So maybe I should have said someone else. So who is that someone? A soul. And then Prabhupada gives so many information. The soul is now jāyate nirate varadāchi. The soul never dies. Never let the soul die. Who dies? Body dies. The soul never dies. And when does the body die? When does the body die? When the soul leaves the body. When the soul leaves the body dies. Right? So, very simple equation. When the soul leaves the body dies. Are you your body? You are not your body. Let me see, how many of you think that you are not your body? So you are not your body. So who dies? The body dies. Who are you? Does the soul die? So will you die? Wonderful. करो, शो ऑनली करता आगे बढ़ा करो. तो नाउ सी हाउ इजीली यू हैव बिकम इमॉर्टल. इफ आई आस्क यू विल यू डाई, यू हैव टू रिमेंबर दैट. दिस इज अ बिग क्वेश्चन. आई एम सेइंग इट बिकॉज time and time again I see the situation that somebody gets a disease, like a very critical disease, like cancer, and one becomes so much affected by that. So that time I have to be that who got cancer? Are you? Your body? Can, who are you? You are the soul. Does the soul get affected by cancer? No. Will you get affected by cancer? But why are you being affected by cancer? Because you are thinking that you are. Therefore Krishna consciousness, practice of Krishna consciousness means to practically realize that you are not this world. Will you remember that? Because death will come in the day. Death will come. What is the? So here again, we go further, we read further Prabhupada's books. When we read Prabhupada's books, what do we get to know? We get more information. What is the information? Materialistic life comprises of four factors. What are those four things? Janma, Mrityu, Jara, Death. Birth, death, old age and disease. So how many of you have taken birth? So those who have taken birth, will they live here forever? Will anybody ever live forever? And Jatash is Drupamrit too. Okay, now again go back to that one. Who is born? Are you born when you born or your body was born? Okay, so body was born, so body will die. And the body will have old age and the body will have disease. Janma, Mrityu, Jara, and can anybody avoid that? At the Janma and Mrityu, nobody can. Whoever is born, whether it's an insect or not Brahma, whether the span of life is 1 second or unlimited amount of time, everybody has to die. So by reading Prabhupada's book we got to know that, right? So now we have to realize that the body dies, the soul will never die. This birth, death, old age and disease will pertain to the body. The soul will never be affected. But what Krishna consciousness is doing, or what Krishna consciousness will do, Krishna consciousness will take us from the bodily consciousness to the soul consciousness. So are you ready for that? That is the purpose of Krishna consciousness. So then what happens? One recognizes that he is a spirit soul. Then what happens? Then the time comes for him to leave the body. Right? But then how does he see? Oh, now is such a wonderful opportunity to become free from the bondage of the body. Say, if you are in the prison house and the time comes to become free from the prison, will you rejoice or will you lament? Rejoice. So this entanglement in the body is like imprisonment. So for a person who is situated in knowledge, when the time comes for death, he feels what a relief, what a relief. And he begins to dance in ecstasy. Body is lying there on the bed, surrounded by near and dear ones. But what he is doing, he is dancing in ecstasy. Now is the time to become free from the bondage of this life. Is it desirable? When that happens, when that happens, one feels sad or one feels happy. When that time comes for becoming free from the bondage of the body, does one become sad or becomes joyful? He naturally feels happy. And in Srimad Bhagavatam, that has been described in one beautiful way when Dhruva Maharaj was leaving his life. How many of you remember that incident? Dhruva Maharaj leaving the planet? Very good. So Dhruva Maharaj was about to leave the planet. So what happened at that time? When the time came for him to leave the planet, the chariot came from the spiritual side to meet the Vishnu rulers came in the chariot. They came and reported, Dhruva Maharaj, the chariot has come to take you back to God. Then what did Dhruva Maharaj do? Dhruva Maharaj prepared himself. He took his bath. He was up in the Himalaya mountain. He took his bath. He said goodbye to all the other saintly personalities there. Then he circumambulated the chariot, it was an auspicious chariot. And when he was about to climb onto the chariot, who did he meet? Very good. He saw death. But what Mr. Death was doing at the time? With folded hands, he was begging Dhruva Maharaj's mercy. My dear Dhruva Maharaj, you have perfected your existence, you are going back to Godhead. So please say a few nice words about me to the Supreme Lord. Please give us your blessing. And then what did Dhruva Maharaj do? He stepped onto death's head to climb on the chariot. So when a devotee faces death, meets death, how does it feel? Death comes to him as a sighting object, or death comes to him begging his mercy. So that is what happens to him. So now just consider, is that the perfection of life? Right? How did it all begin? How did it all begin? Lava Master, Sadhu Santa, just meeting one devotee, distributing books. Right? So this is just one example. And this is how powerful the association of devotees. Therefore, when the opportunity comes, don't waste your time. Get full advantage of this. So we are here to discuss about Krishna. What happens when we take shelter? What happens? So the next few days, next 2 days actually. So tomorrow we'll have 3 sessions. We'll have a Bhagavatam class in the morning, that will be regular Bhagavatam class. Then from 11 to 1 we'll have a seminar. Then again from 5 to 8, like today, we'll have a seminar. And then day after tomorrow in the morning we'll have the Bhagavatam class. And then we'll take breakfast and then we'll Day after tomorrow we have one class or two classes? Two classes? Okay. Radha Chandra Guru really knows how to take advantage of your association. Thank you very much. So, and mind you, in this seminar, what is more important, what is most important is coming up with questions. You are having an opportunity. Do you have any question? Please ask the question. Because by doing that, not only you will benefit, but you will benefit others through your question, other ways. So the questions that you have, you write them down. Like today, now I will open up a question answer session. So we'll go on for question answer for some time, and then we'll have a kirtan, and then at 8 o'clock we will. So any question? Yes? Take the mic. Take it. There is the mic here.
आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन जब स्वाभाविक रूप से आदमी के साथ होता है तो जो आत्मा से आत्मा का शरीर से मोह या मन का शरीर से मोह वो कैसे धीरे धीरे जा सकता है, वो इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि सूर्य के पता अच्छा लगता है रोटी, लेकिन यहाँ से बाहर निकल गया तो फिर भूल जाता है, ये कैसे तरीके?
मतलब ये जब भी हम समझ रहे हैं कि हम आत्मा है फिर भी शरीर के प्रति मोह रह जाता है और अपने रिश्तेदारों के प्रति मोह रह जाता है, इसका ही नाम है माया। माया मतलब भगवान का मोह विस्तारण करने वाले शक्ति। जैसे असल में हम नहीं हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ये है, मैं हूँ। ये तो पहली प्रभाव है जिसका नाम है अहंकार। इसका शुरुआत होता है अहंकार, मैं और मेरा। इसे मैं और मेरा, ये है माया का प्रभाव। और जिसका और एक नाम है ममता। ममता, ममता में ममता, ममता मतलब क्या है? मेरा। ता का मतलब है ये मेरा है, मेरा पिता, मेरा माता, मेरा पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा दोस्त, मेरा संपदा। ये जो मेरा जो अनुभव हो रहा है ये भगवान का माया शक्ति का प्रभाव। तो माया को अतिक्रम करना बहुत ही कठिन है, लेकिन जब हम भगवान को, भगवान के चरण कमलों को शरण लेते हैं तो बहुत आसानी से हम ये माया से मुक्त हो जाते हैं। तो ये मोह माया विरक्ता है, ये माया का प्रभाव अतिक्रम करना बहुत ही कठिन है, विरक्त है, असंभव है। परंतु मावे वे जो मेरा शरण लेता है, प्रपत्ति का मतलब शरण लेना, जो भगवान का शरण ले लेते हैं माया में, भगवान को शरण लेने से बहुत ही आसानी से हम इस माया को अतिक्रम करते हैं। समझे? ये जो ममता जो है, ये मेरा, तो ये मेरा है, ये जो अनुभव, ये क्या सही है या गलत है? गलत। जैसे सोचो पिछले जन्म में तुम्हारा कितना पिता था, माता था, एक ही बारे में याद है, या तो तुम्हारा पति था या पत्नी था उसके बारे में याद है। इस जन्म में जो तुम्हारा पत्नी है
हैं, अगले जन्म में उसके बारे में याद रहेगा, पिता माता के बारे में याद रहेगा। हाँ, तो सोचो ये जो संपर्क हम बना रहे हैं ये केवल क्षण भर के लिए, तो जो क्षण भर के लिए है, जो सपना जैसा है, है उसको ऊपर इतना गुरुत्व देना क्या सही है? ठीक है,
आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या?
आत्मा का वास्तविक स्वरूप है भगवान का दास। मतलब आत्मा, देखो आत्मा का स्वरूप हमें ऐसे पहचानना होगा, समझना होगा कि आत्मा है मैं। आत्मा का मतलब है मैं। तो ये मैं जो है, कभी हम सोचते हैं कि मेरा शरीर मैं हूँ, कभी मैं सोचता हूँ कि मेरा इंद्रिया मैं हूँ, कभी मैं सोचता हूँ कि मेरा मन मैं हूँ। तो ये जो मैं, ये तीनों का ही मैं, तीनों ही आत्मा के रूप में वर्णन हुआ। शरीर को भी आत्मा के रूप में वर्णन हुआ है, इंद्रिया का आत्मा के रूप में वर्णन हुआ है, और मन को भी आत्मा के रूप में वर्णन हुआ है। लेकिन असल आत्मा कौन है? असल आत्मा है हमारा जो चेतन जो मैं, क्योंकि मैं मेरा चेतना। जब मैं चेतन हूँ तब मैं हूँ, जब मैं अचेतन हूँ तब मैं हूँ या नहीं, कुछ या कुछ पता नहीं। तो ये चेतना है, ये मेरा स्वरूप है ना। तो ये चेतना कहाँ से आ रहा है? आत्मा से आ रहा है। तो ये चेतना कौन है? जो ये आत्मा कौन है? ये आत्मा भगवान का अंश है। तो अंश का जो स्थिति का जो सार्थकता पूर्ण के साथ जुड़ते रहने से होता है। देखो ये अंगली, अपना अंगली में तो देखो, ये जो छोटा अंगली है, तो ये शरीर का, हमारे शरीर का अंश है। अगर किसी कारण ये अंगली शरीर से अलग हो गया, इसका कुछ कीमत रहेगा? ढंग से क्या करोगे? देखो है ना, नहीं तो सत्ता बैठ। तो ये अंगुली जैसा, अंगुली शरीर का अंश है, जब तक शरीर के साथ युक्त था तब इस अंगुली का बहुत सारे मूल्य थे, लेकिन जब शरीर से अलग हो गया वो एकदम बेकार। तो वैसे ही हमारा स्थिति का, अस्तित्व का, सार्थकता है भगवान के साथ जुड़ रहे हैं। जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं तो हमारा अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं रहता। जैसे हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, है ना। हर व्यक्ति सोचते हैं, एक चीजें भी सोचते हैं कि मैं बहुत सारे बड़ा हूँ, सारा दुनिया मेरे पास, मेरे चार पावर और चक्कर लगा रहा है, सारा दुनिया का केंद्र हूँ, असल में एक चीज। वैसे तो हमारा भी स्थिति वैसे है, हम असल में कुछ कोई भी नहीं, लेकिन हम सोचते हैं कि मैं कितने शानदार आदमी। और जब हम, जैसे देखो कितने लोग मर जाते हैं, मरने के बाद कोई याद रखता है उसको? आपके घर वाला आदमी भी भूल जाते हैं, केवल भूल ही नहीं जाते हैं, मरने के बाद जितना जल्दी सके भगवान घर से निकलने का आयोजन करते हैं। तो ये है हमारा स्थिति। हमारा घर वाले भी हमको घर में नहीं रखना चाहते। पहले जो मृत्यु के बाद हटाते थे, आज तो जिंदा रहते थे समय भी हटा देते हैं। तो ये है हमारा स्थिति का, अस्तित्व का मुद्दा है। तो क्यों? क्योंकि हम भगवान से अलग हो, और अलग होने के नाते जो हम चाहते हैं हमें नहीं मिलता। हम चाहते हैं आनंद, तो है ना, कितना कोशिश कर रहे हैं, हजारों साल तक, हजारों जन्म तक कितना कोशिश करते रहे,
बल्कि अब तक भी हम वो जो हम चाहते हैं उसको प्राप्त नहीं है। लेकिन जब हम भगवान के साथ संपर्क जोड़ लेते हैं तब तब क्षण हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। तो इसलिए तुम बताओ आप आत्मा का अस्तित्व का क्या तात्पर्य है भगवान के साथ संपर्क।
अच्छा आपका एक प्रश्न
हरे कृष्ण माय क्वेश्चन इज धर्म एंड अधर्म। धर्म एंड अधर्म
धर्म
धर्म और अधर्म
हो। अच्छा
ठीक है ना 5000 ईयर पहले कृष्ण आए अधर्म होता हुआ धर्म स्थापित किया। 2000 ईयर पहले भी अधर्म होता हुआ धर्म गुण किया भागी आए उन्होंने फिर सबको समझाया क्लोथरिंग बंद किया या जो लोगों को भी मार देते थे जैसा नोट्स ऑफ लोअर एंड नोट्स ऑफ डिस्टिंग का हैपनिंग को उन्होंने दिया। पर पिछले 2000 सालों में अधर्म अटका जा रहा है। हाउ डू यू हैव मेनी बिग रिलीजियस पीपल इन द आर्ट लाइक मीरा या आप चैतन्य महाप्रभु देर आर सो मेनी पीपल मे बी अराउंड ए डजन पीपल इन लास्ट 1500 ईयर मोहम्मद जीसस सो मेनी पीपल बट फाइनली अधर्म इज इन बिल्डिंग डे बाई डे। हाउ यू कैन लाइक दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ फैमिली बिल्डिंग बाई टूडेज अधर्म यू कैन नॉट बिलीव इन इन फैमिली बिल्डिंग क्योंकि आपने बोला कि आप परिवार का भी आदमी निकाल देते हैं। तो ये बड़ा दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम बता है इन द वर्ल्ड टूडेज एंड एवरीबडी लुकिंग इन टू डू दिस प्रॉब्लम। तो हाउ टू सॉर्टेड आउट हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग बाय स्टोन एनी वे वेयर वी आर मोटिवेटिंग पॉलिटिकली
वेरी गुड जवाब दे दिया है। जैसे यहाँ क्या हो रहा है यहाँ क्या अधर्म का विरोध हो रहा है अधर्म का विस्तार हो रहा है विरोध हो रहा है तो वैसे ही इसको हो रहा है। जैसे आप जैसे बताया 1500-2500 साल पहले बुद्ध आया महावीर आया तो उन्होंने धर्म के बारे में प्रचार किया। जब पहले प्रचार करना शुरू किया और सुनने के लिए कितने आदमी आए थे केवल 2-4 आदमी ही होंगे। वैसे ही ईसा मसीह को भी उसको सुनने का क्या है जिसको सुनाने लगा वो उसको मार रहा है। तो यहाँ जो हो रहा है जैसे भी लगता है कि बहुत छोटा से ये इसका आयोजन हो रहा है बल्कि ये ही धर्म का स्थापन करने का तरीका है। ये कलयुग का धर्म का स्थापन कैसे होगा कलयुग में धर्म का स्थापन होगा एक कल्पना 4 युग हैं आप तो जानते हैं ना 4 युग क्या क्या है सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग। तो 4 युग का 4 प्रकार का युग धर्म होता है। सत्ययुग का युग धर्म है ध्यान त्रेता युग का युग धर्म है यज्ञ द्वापर युग का युग धर्म है अर्चन पूजन और कवि युग का युग धर्म है संगीत। जैसे कृते जग धायते विष्णु त्रेतायाम जगते मखो द्वापरे परिचर्यायाम करो कृते कृतन में कृतन का मतलब सत्य कृते जग धायते विष्णु विष्णु का ध्यान करना ही सत्ययुग का धर्म। त्रेतायाम जगते मखो त्रेतायुग का धर्म है जगते मखो जगतेश्वर विष्णु का जगत जगते द्वापरे परिचर्चाया द्वापर युग का धर्म है भगवान का पूजन परिचर्चाया और कलो या है मैं क्या बताया कलो सरस्वती भगवान का नाम ये जो भगवान का वाणी का प्रचार होता है कीर्तन होता है, ये ही कली युग का धर्म है और इसी प्रभाव से अधर्म दूर हो। ये पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स, ये लोग कुछ नहीं कर पाए। लोग सोचते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा इंडिया का तो सारे समस्याएं का समाधान होगा। हाँ, तो मैं लिख के दे सकता हूँ, नरेंद्र मोदी आने से भी आज का कुछ परिवर्तन नहीं, जैसा कि दे सकता। जब तक ना नरेंद्र मोदी बोलेंगे हरी नारी राम हरे राम, और इस्कॉन ही ये कर रहा है। आप जैसे बोल रहे इस्कॉन क्या कर रहे, इस्कॉन ही सही धर्म का स्थापना कर रहा है, इसलिए इस्कॉन के साथ युक्त तो होते हुए हैं। आप बहुत अच्छे, आप सही मार्ग में आ गए, ये होगा देखेंगे धीरे धीरे। देखिए 48 साल पहले श्री प्रभुपाद अमेरिका में जाकर ये संस्था का स्थापना किया, एक छोटा सा एक दुकान में, ये दुकान था, वो दुकान को किराया से लेकर वहाँ प्रभुपाद क्लास देते और वहाँ पर इस्कॉन का स्थापना किया। प्रभुपाद को सुनने को कोई नहीं था, प्रभुपाद अकेला न्यूयॉर्क में एक पार्क है टॉम्पकिंस स्क्वायर पार्क जाकर अकेला कीर्तन करते, और आज दुनिया भर करोड़ों आदमी कीर्तन कर रहे हैं केवल 48 साल के बीच। तो आप बताइए, और 50 साल 100 साल के अंदर क्या होने वाला है, ये बढ़ता रहता है या कमता रहता है? बढ़ रहा है ना, तो इस मन का प्रभाव क्रमशः बढ़ता जाता है, और कैसे बढ़ेगा, बढ़ने का भी एक तरीका होता है, एक तरीका होता है जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। देयर आर सो मेनी आईआईटी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन? मल्टीप्लीकेशन ऑफ द क्वांटम, जैसे 2 से 4, 4 से 8 नहीं, 4 से 16, 16 से 32 नहीं, 16 से 16 बाई मल्टीप्लाइड बाई 16, इसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये हरि भक्ति का जो प्रचार हो रहा है ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से हम विचार नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद क्या होगा उसको मल्टीप्लाई होगा उस नंबर से। ऐसे ही हो रहा है, यस करा रहे that he hasn't done anything for Krishna, he simply wasted his life. But at the time of death, if Krishna comes and stands in front of him, then how will he do? And that's what Krishna does. Either he will come and stand in front of you, or he will send a chariot to take you. So that is the reward of devotion.
I want to share a personal question actually. इतना ही मुझे पता है कि मटेरियल एडवांसमेंट चल रही है, उसके बावजूद जब मैं आई टी में काम कर रहा था, रिसर्च कर रहे हैं, तो जब हम देखते हैं हमारे सीनियर हमारे कभी नए नए नोटिफिकेशन छाप रहे हैं, नए नए नोटिफिकेशन पब्लिश कर रहे हैं, उसके बाद भी मुझे लगता है मुझे भी करना चाहिए। तो मैं सुंदर प्रयोग हम करते हैं तो सुरु कहाँ हो अल्टोमिन लाइन भी रुक गया रात में, तो उसके लिए हमारे मंगल आरती कभी भी छूट जाता है तो करके भी सब चीज़ से बाहर आने कैसे हैं अपने आप को वहाँ कैसे करना चाहिए।
हाँ तो प्रश्न क्या है
एक्चुअली मुझे पता है कि ये मटेरियल एडवांसमेंट टेम्प्रेरी है, इसके बावजूद जब मैं लोगों को देखता हूँ, कलीग को देखता हूँ कि वो हमारे लैब में देर रात तक काम कर रहे हैं और नए नए पब्लिकेशन ये सब ला रहे हैं, तो मैं भी उनकी तरह के किसी बात करता हूँ, मैं भी वैसे काम करना चाहता हूँ देर रात में।
ठीक है, जो कुछ कर रहे हैं वो सही रूप से कर, जैसे अक्सर हमारा लोग ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ के करने का फैसला, भक्ति का मतलब होता है जो कुछ हम करते हैं भगवान के लिए, और भगवान जी ने करने के लिए कारण है इसका फल भगवान को अर्पण करते हैं, उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं है। हम कोशिश करते हैं वी ट्राई आवर बेस्ट द रीज द रिजल्ट एंड देन वी विल सी बिकॉज वी आर नॉट अटैच वी आर नॉट, क्योंकि हम उसके काम के प्रति स्पल के प्रति आशक्त नहीं रहते हैं तो उसमें हम उसके बंधन में नहीं रहते। भगवान के लिए हम कुछ कर रहे हैं और जो भगवान देंगे कभी भगवान आपको बहुत रिवार्ड देंगे और कभी भगवान ऐसे कुछ भी नहीं दे सकते। चलो ये भगवान का मर्जी है, भगवान तो अपने इच्छा के मुताबिक नहीं चलेंगे, वो अपनी इच्छा के अनुसार, तो भगवान जो चाहते हैं उन्हीं हम स्वीकार करें, यह है भक्त का मन। इस मनोभाव में ही इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तब क्या होगा हम सारे ये जो उसका प्रभाव जो है इस प्रभाव से हम रहेंगे और मन में आनंद में। ठीक है,
you should not
consider, now tell me, what was your question?
When is, how exactly I should consider that particular in my coming? I should identify that
that is your karma. Okay, the simple principle is, when bad things happen, you think it's your karma. And when good things happen, you think it's Krishna's mercy. Okay? You get the point. Generally what people do, when bad things happen, they blame Krishna. And when good things happen, they want to give credit to their karma. Oh, because I have good karma, I have done that, I got it. Right? Because I have done something good, that's why I got it. And when bad things happen, they don't even want to give the credit to take the credit themselves or give it to their karma. So the best way to approach it is, you say, ultimately everything is happening with your karma. Right? You understand, you accept that. Can anything happen without a cause? Nothing can happen with a cause. The cause. Behind every action there is a cause. Therefore we say because of this. Right? So that cause is karma. I have done something wrong, that's it. Right? And so this is how we have to, first of all, we have to understand that everything happening is happening in this material nature, as Krishna said, is due to our current reaction. Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvasa. In this prakriti, in this material nature, everything is happening according to guna. But ahankara vimurātmā kartāmā. Being bewildered by his ahankar, he is a very small syndrome, he thinks that he is the hero. So we have to realize that we are not the hero. Now, the best way to approach that is when bad things happen, we must identify it because of the bad action. Say, I lost my mind. I may blame so many people. But the best way to think could be, I must have done something wrong, that's why I have a result. And when good things happen, we should give the credit to Krishna. Krishna is by your mercy that particular. So this is how we develop our proper understanding of our karma and attachment to Krishna. Alright? Thank you. Hare Krishna. So the last question and then we'll go into the okay, last two questions.
90% अपने मतलब साथियों को उनको देखकर और अपने आप को मैं दूसरों को क्या दोस्तों अपने को देख लूँ मैं भगवान को भी के घर में मतलब जैसे भगवान चलता था तो सबको रसगुल्ला डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे तो मेरे को नहीं मिला मन को बहुत उनका मन जो को उसको नहीं जो मिलता है संतुष्ट रहो और मुझे रसगुल्ला मिला तो बहुत अपने आप में बहुत मिला
Radha Kendra, can you please give the essence of the question?
I prefer to control my mind. Whatever I am getting, I will be satisfied. If I am getting the Rasgulla at that particular moment, and I could not feel satisfaction, then how can I just transform my heart? And how can I feel that I become humble and accept the situation?
So what is the first part? My mind?
Yeah, actually he was attending one Sasha program in Guadalajara, he was in Jammu. So there the Prasadam was in his heart. And there was one Rasgulla shot and he did not get it. So he was just feeling, oh, no problem, because I didn't get no problem. Ultimately, I thought I didn't get the problem.
So आपके आप गोरखपुर को बताया था क्या बताइए ऐसे कल हो रहा है प्रिया आपको मैं 5-5 वर्ष से लग रहा And Gaura Gauriya always make sure that there is no shortage of Guru Gita.
Guru Maharaj, ये की विनम्रता है कि लोगों के सामने बात बोल रहे हैं अपने मेरे जीवन में विशेष रूप से इनसे हम ड्यूटी हो गई है तब से एजेड हैं और सबको बड़े प्रसाद कराने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करते हैं इनसे रिक्वेस्ट करते हैं आप पहले लोग नहीं लाभ के प्रसाद लें ये ये विनम्रता है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे सबके सामने बहुत अच्छे हो रही है
There are many devotees in the group, and philosophically, these questions with answers are so accurate. Means, I don't know how much he has read the Bhagavatam and how deeply, but actually, I have realized many of the answers when we ask him difficult questions, and he's the person who will get accurate.
Very
good.
Thank you. Thank you so much. Hare Krishna.
हरे कृष्ण गुरु महाराज का नमस्कार गुरु महाराज के अधीन क्रिसमस एक लाइफ वॉट एवर वी हैव गॉट इट इज रिसीव फ्रॉम द लॉर्ड कृष्णा बट व्हेन टाइम कम्स टू सर्व द कृष्णा पीपल स्टार्ट थिंकिंग दैट ओके समथिंग इज टू बी गिवन टू कृष्णा सो वी थिंक कैन इवन आई कंसीडर माय सेल्फ वी स्टार्ट थिंकिंग एनी टाइम सो दैट्स द प्रभाव ऑफ माया सो हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ इट
You see, ultimately it should come from within, through realization. First we practice. Prabhupada said, Krishna is telling you about it. Whatever you do, do it from me. Jab karo si jagat naati, jab karo si jagat naati. So because Krishna is telling that, we should try to do that, whether we like it or not. But then gradually we start to get the taste. And when it is a taste, then we naturally want to do it more. And this increases our intensity to do that, to serve Krishna. Gradually, the practice in the process will take us to the point of perfection. Okay, last question.
जैसे मेरा प्रश्न है आपत्ति को
लेकर आपका प्रश्न क्या है
आपत्ति को लेकर जैसे माता पिता जैसे अटैचमेंट हमें माता पिता से हो जाता है बीवी बच्चों से हो जाता है तो वो जैसे अटैचमेंट आफ्टर गोइंग टू कैसे बोल रहे हमारे हमारे अगले 7 जन्म तो पिछले 7 जन्म के माता पिता को लेके जा सकते हैं हम लोग उनका भी उपचार कर सकते हैं तो वहाँ जाने के बाद भी आपत्ति रहती है क्या होता
है नहीं वहाँ जाने के बाद आशक्ति नहीं रहता है क्योंकि असल जगह में जब आशक्ति बन जाता है कृष्ण के साथ आशक्ति जब बन जाता है तो कृष्ण के माध्यम और सबके साथ संपर्क जो हो जाता है इसलिए और अलग से आशक्ति नहीं है
ये तो कन्फर्म है कि हम लोग ले जा सकते हैं
जैसे आपका जो आशक्ति जो है ये शरीर की मात्रा है ये आशक्ति शरीर की मात्रा है कि ये शरीर का पिता माता बना ये शरीर का पत्नी पत्नी बना ये शरीर के बाल बच्चे बना ये शरीर के दोस्तों जब ये शरीर हम त्याग देंगे छोड़ देंगे तो सारे को भी ऐसे मिल जाए सारे संपर्क सारे आशक्ति मिल जाए तो ये इसलिए ये भौतिक जगत का जो आशक्ति है वो क्षण भर के लिए है और ये अनित्य है ये स्थायी नहीं है ये अस्थायी है जब तक शरीर है तब तक है जब शरीर जैसे पूरे जन्म के जो पिता माता था और रिश्तेदारों थे उनके बारे में कुछ याद है
नहीं
क्योंकि वो शरीर के माध्यम जितने सारे संपर्क बना था वो शरीर टाइमली के पड़ने पर सारे सफर खत्म हो गया। वैसे ही इस जन्म का जो इस शरीर का जो संपर्क अगले जन्म में उसको भी कुछ पता नहीं रहेगा कि आगे, लेकिन जबकि शरीर अधिकतर है लेकिन आत्मा नहीं है, और आत्मा के साथ जो संपर्क बनता है वो संपर्क नित्य रहता है, और आत्मा के संपर्क बनने का तरीका केवल एक ही है, कृष्ण के प्रति आत्मा। हमारा आशक्त कृष्ण के प्रति जाता है, और कृष्ण के कृष्ण क्योंकि कृष्ण ही सब कुछ की स्रोत है, इसलिए कृष्ण के माध्यम और सबके साथ संपर्क बनता है ना। जैसे ये जो शरीर है, शरीर का भिन्न भिन्न अंग है, प्रत्यंग है, तो ये शरीर के नाते वो सारे के संपर्क बन चुका है ना। ये है एक अंगली और ये है कान, ये है इना और ये है इना, लेकिन संपर्क है कान में, अगर बच्चे काटेगा तो क्या होगा। तो ऐसे ये जो संपर्क है, ये संपर्क शरीर के पूर्ण शरीर के माध्यम बन रहा है, एक हर अंग प्रत्यंग के साथ हर अंग प्रत्यंग का शरीर का संपर्क बन चुका है। वैसे ही जब भगवान के साथ संपर्क जोड़ते हैं तो भगवान को केंद्र बनाकर और सबके साथ हमारा संपर्क बन जाता है। स्वयं हरे कृष्ण।
Ram, Ram,